जी आगे सबक देखिए भाई। वल्किन्नु फिल फसलैन कल मुदब्बरि लाकिन सैयद यदफ़ु अल्किन्न व क़ीमत अल मुदब्बरि اي اذا كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفع القن ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب ويسلم للمالك عند محمد رحمه الله تعالى وعندهما لا يسلم له بل يدفعه الى الاول فاذا دفعه الى الاول يرجع في الفصل الاول على الغاصب وفي الثاني لا मुदब्बर और उम्मे वलद को गसब करने से मुतअल्लिका मसाइल जिक्र हो रहे हैं भाई। गुज़श्ता सबक के आखिर में आपने मसाला पढ़ा था कि अगर एक मुदब्बर है उसने एक जिनायत गासिब के पास की और दूसरी जिनायत मालिक के पास की, किसी ने गसब किया था वहां पहली जिनायत इसने कर दी और फिर गासिब ने वापस लौटा दिया और फिर उसने मालिक के पास दूसरी जिनायत कर दी, तो एक सूरत यह थी। दूसरी सूरत यह थी कि पहली जिनायत मुदब्बर ने मालिक के पास की और फिर किसी ने गसब किया और दूसरी जिनायत उसने गासिब के पास की, तो पहली सूरत थी जिसमें पहली जिनायत गासिब के पास थी और दूसरी जिनायत मालिक के पास। आपने पढ़ा था कि पहली जिनायत वाला वो मुस्तहिक होता है मुदब्बर की सारी कीमत का, बशर्ते कि जिनायत मुदब्बर की कीमत से भी ज्यादा हो। ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि अकल्ले जमान आया करता है, तो जब पूरी कीमत का हकदार वो बन रहा है मालूम हुआ कीमत अकल है और अर्श जो बन रहा है वो इससे भी ज्यादा है, तो कम अज कम कीमत तो फिर जरूर लेगा वो भाई। तो पहली सूरत जिसमें मुदब्बर ने गासिब के पास पहली जिनायत की है, तो पहली जिनायत वाला जो होता है वो शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक पूरी कीमत का मुस्तहिक होता है क्योंकि उस वक्त उसके मुकाबले में कोई दूसरी जिनायत नहीं, तो वो सारी कीमत का हकदार बनेगा क्योंकि उसका नुकसान तो पूरी कीमत से भी ज्यादा हुआ है, तो अकल का वो हकदार बनेगा। और दूसरी जिनायत वाला जो है वो आधी कीमत का मुस्तहिक होगा, इसलिए क्योंकि उसकी जिनायत चाहे जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो लेकिन मुकाबले में पहली जिनायत मौजूद है, तो दो जिनायतों में जब मुदब्बर को तकसीम करेंगे तो एक को आधी कीमत मिलेगी और दूसरे को भी आधी। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि पहली जिनायत वाला पूरी कीमत का मुस्तहिक होता है और दूसरी जिनायत वाला आधी कीमत का। तो शेखैन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि जब मुदब्बर ने पहली जिनायत गासिब के पास की है और दूसरी जिनायत मालिक के पास की है, तो अब मालिक जो है उसको कीमत देना पड़ेगी, मुदब्बर तो वो दे नहीं सकता क्योंकि मुदब्बर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि उसका हक आजादी जाया होता है। तो आका पूरी कीमत निकालेगा और आधी कीमत पहली जिनायत वाले को दे देगा और आधी कीमत दूसरी जिनायत वाले को। तो ये जो पहली जिनायत वाले को आधी कीमत दी, ये किसकी वजह से देना पड़ी? गासिब की वजह से, गासिब के पास इसने पहली जिनायत की थी, तो पहली जिनायत वाले को जो आधी कीमत देना पड़ी वो गासिब की वजह से देना पड़ी, लिहाजा आका रुजू करेगा गासिब पर और जाकर उससे आधी कीमत ले आएगा। और पहली जिनायत वाला जो है उसका हक तो पूरी कीमत बनता है और उसको अभी आधा मिला है, तो जब उसने देखा कि आका जो है वो आधी कीमत गासिब से दोबारा ले आया है, तो वो वाली आधी कीमत भी पहली जिनायत वाला ले लेगा आकर। और पहली जिनायत वाले ने ये आधी कीमत भी ले ली आका से, तो ये फिर किसकी वजह से ली उसने? गासिब की वजह से, क्योंकि जिनायत गासिब के पास हुई थी। तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि आका दोबारा गासिब पर रुजू करेगा और मजीद आधी कीमत उससे ले आएगा, और ये वाली जो दूसरी दफा आधी कीमत लाया है ये आका ही के पास रहेगी, ये आका ही की हो गई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब आका ने कीमत तकसीम कर दी, आधी कीमत पहली जिनायत वाले को दे दी और आधी कीमत दूसरी जिनायत वाले को, उसके बाद जब आका ने गासिब पर रुजू किया और उससे आधी कीमत ले आया, तो ये आधी कीमत ईवज है उस आधी कीमत का जो आका ने पहली जिनायत वाले को दी थी। आका ने पूरी कीमत तकसीम की थी किस में? दोनों जिनायत वालों में, आधी कीमत पहली जिनायत वाले को और आधी कीमत दूसरी। और ये पहली वाले को आधी कीमत क्यों देना पड़ी? इसका सबब कौन बना था? गासिब। लिहाजा आका जाएगा और उससे आधी कीमत ले आएगा उस कीमत के एवज में जो उसने पहली जिनायत वाले को दी। तो पहली जिनायत वाले को जो दी वो हुआ मुबदल, और जो गासिब से लेकर आया वो है उसका बदल। लिहाजा अब ये बदल जो है वो पहली जिनायत वाले को नहीं देंगे, वरना तो बदल और मुबदल मिनहू का एक ही शख्स की मिल्कियत में जमा होना लाजिम आएगा और ये जायज नहीं है। भाई बात समझ में आ गई? एक ही शख्स को दोनों का मालिक बना दिया जाए? नहीं भाई, या तो वो बदल का मालिक बन सकता है या मुबदल का, दोनों का मालिक नहीं बन सकता। और ये जो बदल लाया है ये किससे लाया? गासिब से। ये किसका बदल है? जो पहली जिनायत वाले को आधी कीमत दी थी, तो ये उसी का बदल है। तो मुबदल भी उसके पास है और बदल भी उसको दे दे, ये नहीं हो सकता। ये इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला फरमाते हैं। तो ये मालिक ही के पास रहेगा। तो फर्क क्या क्या आया? इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक पहली जिनायत वाले को भी आधी कीमत ही मिलेगी और दूसरे को भी आधी कीमत ही मिलेगी, और नीज आका एक ही दफा रुजू करेगा, दोबारा रुजू नहीं करेगा गासिब पर। जबकि शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक पहली जिनायत वाले को पूरी कीमत मिलेगी और दूसरी जिनायत वाले को आधी कीमत, और नीज शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक आका दो दफा रुजू करेगा गासिब पर, पहले भी आधी कीमत लाएगा और दोबारा भी। लेकिन पहली आधी कीमत वो फिर पहली जिनायत वाला ले लेगा और दूसरी आधी कीमत जो है वो आका के पास ही रहेगी। मसला समझ में आ गया? जबकि दूसरी सूरत यह थी कि जब गुलाम ने पहली जिनायत जो है वो आका के पास की है और दूसरी जिनायत किसके पास की है? गासिब के पास की है। तो इस सूरत में शेखैन रहमहुमल्ला भी फरमाते हैं कि गासिब पर एक ही दफा रुजू किया जाएगा, यानी उससे आधी कीमत ले आएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी जिनायत गासिब के पास हुई और दूसरी जिनायत वाला तो सिर्फ आधी कीमत का मुस्तहिक है, तो सिर्फ एक ही दफा रुजू करके आधी कीमत ले आएंगे। लेकिन ये आधी कीमत फिर जो है पहली जिनायत वाला ही ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि आका ने एक दफा फिर देखें, पहली जिनायत किसके पास की है? आका के पास। दूसरी किसके पास की है? गासिब। ये दूसरी सूरत हम जिक्र कर रहे हैं। पहली सूरत थी जब पहली जिनायत थी गासिब के पास और दूसरी थी आका के पास। अब वो सूरत कर रहे हैं जब पहली जिनायत आका के पास है और दूसरी जिनायत गासिब के पास, और पहली जिनायत वाला मुस्तहिक होता है पूरी कीमत का और दूसरी जिनायत वाला मुस्तहिक होता है आधी कीमत का। तो लिहाजा जब आका जामिन हुआ, उसने पूरी कीमत निकाली, आधी पहली जिनायत वाले को दे दी और आधी दूसरी जिनायत वाले को, और ये दूसरी जिनायत वाले को आधा क्यों देना पड़ा? गासिब की वजह से। तो लिहाजा गासिब पर रुजू करेगा और उससे आधी कीमत ले आएगा। और जब आधी कीमत ले आया तो पहली जिनायत वाले ने तो अभी तक आधी वसूल की है और उसका हक तो पूरी कीमत है, तो ये वाली आधी भी पहली जिनायत वाला ले लेगा। लेकिन अब आका दोबारा गासिब पर रुजू नहीं कर सकता क्योंकि पहली जिनायत आका के पास हुई थी, गासिब के पास नहीं हुई थी। फर्क समझ में आ गया? अब आगे यही मसला जिक्र कर रहे हैं आम गुलाम में। किसमें? आम गुलाम। मुदब्बर को तो आका ने कहा है तुम मेरे मरने के बाद आजाद हो, वो तो किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन आम गुलाम में तो आपने पढ़ा है आका को इख्तियार होता है या कि जिनायत की सूरत में जिनायत वाले को वो गुलाम दे दे या अर्श दे दे। तो जब आम गुलाम में मसला है तो यहां पर फिर गुलाम की कीमत देने के बजाय गुलाम दे देगा आका। भाई बाकी वही सूरत और फिर आधी कीमत के अंदर उसी तरह रुजू वगैरह होगा। रुजू जो होगा वो कीमत के साथ ही होगा, लेकिन जमान जो आका पर आएगा वो कीमत नहीं देनी पड़ेगी बल्कि क्या देना पड़ेगा? गुलाम देना
गुलाम
पड़ेगा।
देना
फर्क
पड़ेगा।
समझ में आया?
जी
मुदब्बर में जमान के तौर पर कीमत देनी
जी
पड़ी, आगाज से ही शुरू से ही कीमत देना पड़ी, मुदब्बर नहीं देना पड़ा, क्योंकि मुदब्बर का मालिक किसी और को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आम गुलाम को तो दिया जा सकता है, लिहाजा यहां वो आम गुलाम देगा। बात समझ में आ गई?
जी
देखिए मजीद मैं तफसील जिक्र करता हूं। तो कहते हैं वलकिन्नु फिल फसलैनी कल मुदब्बरी, किन्नुन कहते हैं आम गुलाम को, कहते हैं और आम गुलाम जो है फिल फसलैनी दोनों फसलों में, यानी दोनों सूरतों में, कौन सी दो सूरतें? पहली सूरत जब पहली जिनायत गासिब के पास और दूसरी जिनायत आका के पास, और दूसरी सूरत के पहली जिनायत आका के पास और दूसरी जिनायत गासिब के पास। कहते हैं वलकिन्नु फिल फसलैनी, और आम गुलाम जो है दोनों फसलों यानी दोनों सूरतों में कल मुदब्बरी, वो मुदब्बर की तरह है, यानी उसी तरह मसला रहेगा। सिर्फ क्या आएगा, फर्क क्या आएगा, वो बतलाने लगे लाकिन न सईद यद फाउल किन्न व कीमत अल मुदब्बरी, लेकिन आका हवाले करेगा किन्न यानी आम गुलाम को वकीमत अल मुदब्बरी, और मुदब्बर की कीमत को, मुदब्बर में कीमत देगा और आम गुलाम में वो आम गुलाम ही दे देगा। तो कहते हैं अदा कान मकाम अल मुदब्बर किन्न फिल फसलैनी यद फाउल किन्न। अब इसकी भी जरा सूरत बना लो, आम गुलाम देगा किस तरह सूरत बनेगी। पहली जिनायत गुलाम ने किसके पास की? आम गुलाम है, मुदब्बर नहीं है, इसको किसी ने गसब कर लिया। पहली जिनायत इसने गासिब के पास की और दूसरी जिनायत आका के पास। तो अब आका पर जमान आया, दो जिनायतें हैं, आका वो पूरा गुलाम हवाले कर देगा, आधा गुलाम पहली जिनायत वाले का हो गया और आधा गुलाम दूसरी जिनायत वाले का हो गया। और ये जो पहली जिनायत वाले को आधा गुलाम देना पड़ा, इसका सबब कौन बना था? गासिब। लिहाजा आका जाएगा और जाकर रुजू करेगा किस पर? गासिब पर, और उसे आधी कीमत ले आएगा। जब वो लेकर आएगा तो पहली जिनायत वाला तो पूरे गुलाम का हकदार है और दूसरी वाला आधे का हकदार है, लेकिन पहली वाले को तो अभी आधा गुलाम मिला है, लिहाजा वो ये आधी कीमत भी उससे ले लेगा। और ये जो आधी कीमत जो वो गासिब से लाया था, ये दोबारा पहली जिनायत वाले को देना पड़ी। किसकी वजह से देना पड़ी? गासिब की वजह से। लिहाजा आका दोबारा रुजू करेगा गासिब पर और मजीद आधी कीमत ले आएगा, और ये फिर आका ही की रहेगी। सूरत समझ में आ गई? यानी बियाई नहीं, वही सूरत है, बस सिर्फ गुलाम देना है। फर्क समझ में आ गया? तो कहते हैं अईदा कान मकाम अल मुदब्बर किन्नुन फिल फसलैनी, और अगर मुदब्बर की जगह पर आम गुलाम हुआ दोनों मसलों के अंदर, तो यदफउल किन्ना, तो आका जो है वो आम गुलाम हवाले कर देगा। सुम यरजिउ बिनिस्फ कीमति ही अलल गासिब, फिर आका रुजू करेगा निस्फ कीमत के साथ गासिब पर, उस गुलाम की जो निस्फ कीमत है उसके साथ गासिब पर रुजू करेगा। वही सल्लमु लिल मालिक इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और ये जो आधी कीमत है ये खास रहेगी आका के लिए, यानी ये आका ही की हो जाएगी। इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमल्ला के नजदीक। वाइंदहुमा ला युसल्लमु लहू, और शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक ये आका की नहीं होगी। बल यदफउहू इलल अव्वली, बल्कि ये आधी कीमत भी पहली जिनायत वाले को दे देगा आका। आका ये आधी कीमत जो गासिब से लाया है ये भी पहली जिनायत वाले को दे देगा। फईदा दफाहू इलल अव्वली, पस जब आका ये आधी कीमत हवाले कर दे पहली जिनायत वाले को, यरजिउ फिल फसल अव्वल अलल गासिब, तो दोबारा रुजू करेगा पहली फसल में, यानी पहले मसले के अंदर दोबारा रुजू करेगा। अलल गासिबी, किस पर? गासिब पर। पहला मसला कौन सा? जब पहली जिनायत कहां की थी? गासिब के पर। तो उसमें वो आका दोबारा रुजू करेगा अलल गासिबी, गासिब पर। वफिसानी ला, और दूसरी सूरत में दोबारा रुजू नहीं करेगा। आगे देखिए मुदब्बरुन गुसिबा मर्रतैनी फजना फी कुल मर्रतिन जमीन सय्यिदुहु कीमतहु लहुमा। सूरत मसला ये, एक गुलाम को गसब किया गया और उसने गासिब के पास पहली जिनायत की, फिर गासिब ने वापस कर दिया आका को, फिर दोबारा गासिब ने गसब किया और गुलाम ने गासिब के पास फिर दोबारा दूसरी जिनायत कर दी। तो अब देखो दोनों जिनायतें उस गासिब के पास हैं, तो अब क्या किया जाएगा? कहते हैं मसला बिल्कुल उसी तरह होगा। अब यह है कि अब दोनों जिनायतों की कीमत गासिब से वसूल होगी, फर्क सिर्फ यह आएगा कि क्योंकि दोनों जिनायतें किसके पास हुई हैं, गासिब के पास, तो यहां तो एक ही सूरत बनेगी भाई, दो सूरतें भी नहीं बनेंगी, क्योंकि दोनों जिनायतें किसके पास हैं, गासिब के पास। और पहली जिनायत वाला कितने का मुस्तहिक है, पूरी कीमत का, और दूसरी जिनायत वाला आधी कीमत का। लिहाजा जब वो मुदब्बर वापस आया आका के पास, उसने दूसरी जिनायत जब कर दी, उसने वापस लौटा दिया, तो अब आका जामिन है दोनों जिनायतों का। चुनांचे आका उस मुदब्बर की पूरी कीमत निकालेगा, आधी कीमत पहली जिनायत वाले को दे देगा और आधी कीमत दूसरी। बात समझ? क्योंकि आका एक ही कीमत का जामिन होगा ना, एक से ज्यादा का तो जामिन नहीं। इसने जो मुदब्बर बनाया तो गुलाम को रोक लिया, देना तो गुलाम चाहिए था, लेकिन ये आका मानिया बन गया गुलाम को देने से, क्योंकि इसने उसको मुदब्बर बनाया हुआ है। तो जब मुदब्बर के लिए मानिया बना है तो मुदब्बर की कीमत उसका कायम मकाम हो जाएगी, अब वो देना पड़ेगी। तो वो एक ही कीमत निकालेगा आका, और आधी पहली जिनायत वाले को दे देगा और आधी दूसरी जिनायत वाले को दे देगा। तो जो जो पहली जिनायत वाले को आधी कीमत देना पड़ी, इसका सबब कौन? गासिब। और दूसरी वाले को भी आधी कीमत देना पड़ी, इसका सबब भी कौन? गासिब। तो लिहाजा इस दफा अब पूरी कीमत के साथ रुजू करेगा आका। पहले आधी कीमत के साथ रुजू करता था क्योंकि एक जिनायत उसके पास हुई थी और उसको आधी कीमत ही शुरू में दी थी। तो यहां पर दोनों को जो आधी आधी कीमत दी है उसका सबब कौन बन रहा है? गासिब। लिहाजा पूरी कीमत के साथ गासिब पर रुजू करेगा और जाएगा और जाकर उससे पूरी कीमत ले आएगा। जब पूरी कीमत ले आया तो पहली जिनायत वाले ने देखा कि आका के पास फिर गुलाम का बदल आ गया है और मेरा हक तो पूरी कीमत था और मुझे तो अभी आधी कीमत मिली है। वो फिर आका के पास आएगा और मजीद आधी कीमत ले जाएगा। और ये आधी कीमत पहली जिनायत वाले को जो आका को दोबारा देनी पड़ी, ये किसकी वजह से देनी पड़ी? गासिब की वजह से। तो आका दोबारा रुजू करेगा गासिब पर और उससे फिर आधी कीमत मजीद ले आएगा, और ये आका ही की हो जाएगी। सूरत समझ में आ गई? कहते हैं मुदब्बरुन गुसिबा मर्रतैनी, ऐसा मुदब्बर जिसको दो मर्तबा गसब किया गया, फजाना फी कुल मर्रतिन, पस उस मुदब्बर ने जिनायत की हर मर्तबा में, यानी पहली दफा गसब में भी एक दफा जिनायत की और दूसरी मर्तबा गसब में भी एक जिनायत की, तो जमीन सईदहु कीमतहु, तो इसका आका जामिन होगा इसकी कीमत का, लहुमा उन दोनों जिनायत वालों के लिए, तो कीमत का जामिन होगा, आधी आधी दोनों जिनायत वालों को दे देगा। व रजअ बिकीमति ही अलल गासिबी, और रुजू करेगा उस मुदब्बर की पूरी कीमत के साथ गासिब पर, क्योंकि दोनों जिनायतें उसके पास हुई थी। व दफा निसफहा इलल अव्वली, और ये जो आधी कीमत ले आया गासिब से वो फिर हवाले कर देगा, वो निसफ कीमत इलल अव्वली पहली जिनायत वाले को। रजा बिहिल अलल गासिबी, और फिर दोबारा रुजू करेगा गासिब पर और ये आधी कीमत उससे दोबारा ले आएगा। सूरत समझ में आ गई? सूरत खुद बयान कर रहे हैं, ऐ मुदब्बर उन गसबहुल गासिबु, एक मुदब्बर जिसको गसब किया गासिब ने, फजना इंदहु, फिर उस मुदब्बर ने उस गासिब के पास जिनायत की, सुम मरद दहु अलल मालिक की, फिर गासिब ने वापस कर दिया वो मुदब्बर मालिक को, सुम मगसबहु, फिर दोबारा गसब कर लिया उस मुदब्बर को, फजना इंदहु, फिर मुदब्बर ने दोबारा जिनायत की उसके पास, फअलल मालिक की कीमतहु बैनहुमा निसफैनी, तो उस मुदब्बर के मालिक पर उस मुदब्बर की पूरी कीमत है, बैनहुमा निसफैनी, जो उन दोनों जिनायत वालों के दरमियान आधी आधी तकसीम होगी। लिअन्नहु मना रकबतन वाहिदतन बितदबीर, इसलिए क्योंकि आका ने रोका एक रकबे को बित तदबीर, मुदब्बर बनाने की वजह से। मुदब्बर बनाने से एक रकबा रोका है तो एक ही कीमत आएगी, यानी डेढ़ गुना कीमत नहीं आएगी कि एक को पूरी जिनायत दे और एक को आधी दे, नहीं, कीमत एक ही मुदब्बर की आएगी अव्वलन आका पर। तो कहते हैं फत्ता जिबु अलैहि कीमतहु, तो पस आका पर उस मुदब्बर की कीमत वाजिब हो जाएगी। और वो उन दोनों को उसने दे दी। सुम मयर जो भी तिलकल कीमती अलल गासिबी, फिर आका रुजू करेगा उस कीमत के साथ गासिब पर, क्योंकि पूरी कीमत आका के हाथ से निकली और किसकी वजह से निकली, उस गासिब की वजह से, क्योंकि दोनों जिनायतें गासिब के पास हुई हैं, पहली जिनायत वाले को जो आधी कीमत दी वो भी गासिब की वजह से और दूसरी जिनायत वाले को जो आधी कीमत दी वो भी गासिब की वजह से। तो लिहाजा तुम यरजिउ बितिल्कल कीमति अलल गासिबी, फिर आका रुजू करेगा उस कीमत के साथ गासिब पर, लिअन्नल जिनायतैनि कानता इंदहू, इसलिए क्योंकि वो दोनों जिनायतें गासिब के पास थीं। फयदफउ निस्फहा इलल अव्वली, फिर ये जो पूरी कीमत आका ले आया इसका आधा फिर किसको दे देगा, पहली जिनायत वाले को। यह माना है फैद फाउ निस्फहा इलल अव्वली, फिर इस कीमत का आधा दे देगा पहली जिनायत वाले को। वयरजिउ बिही अलल गासिबी, और रुजू फिर करेगा किस पर, गासिब पर, यानी दोबारा आधी कीमत उससे ले आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे है कबला दफ़ निस्फ इलल अव्वली, कबला दफ़ निस्फ इलल अव्वली, ये इबारत यहां जुड़ती नहीं है अगर इसको कबल ही रखा जाए, कबल। और जितने मैंने नुस्खे और भी देखे सब जगह यहां कबल का लफ्ज ही है और माना नहीं बनता। देखो वयरजिउ बिही अलल गासिबी, और आका उस आधे में भी रुजू करेगा गासिब पर, कबला दफ़ निस्फ इलल अव्वली, पहली जिनायत वाले को वो आधा देने से पहले, आधा देने से पहले रुजू करेगा, ये बात बनती ही नहीं है। आधा देने के बाद रुजू किया जाता है, पहले रुजू नहीं। जब दे दिया तो चूं नुकसान हो गया और गासिब की वजह से हुआ, फिर रुजू किया जाता है, उससे पहले नहीं। तो ये इबारत जुड़ती नहीं है। हां एक सूरत में यह इबारत बेहतरीन हो जाती है, वो ये कि ये कबल ना पढ़े, इसको कीला पढ़े, अब इबारत बेहतरीन हो गई। तो ये कबल का लफ्ज नहीं है बल्कि कीला है, दरमियान में या है, या कीला कहा गया है। दफा अन निस्फ इलल अव्वली वहादा मुत्तफकुन अलैह, भाई ऊपर जो मतन आया था ना, मतन के आखिर में व दफा अन निस्फहा इलल अव्वली, ये जो आधी कीमत है इसका निसफ किसको दे देगा फिर,
पहले।
ये जो कीमत लेकर आया है इसका आधा फिर किसको दे देगा, पहली जिनायत वाले को। ये जो मतन में आया तो कहा कीला, इससे इसकी तरफ इशारा, कीला कहा गया है दफा अन निस्फ इलल अव्वली, देखा ये वही इबारत है, ऊपर क्या थी व दफा अन निस्फ इलल अव्वली और नीचे क्या है दफा अन निस्फ इलल अव्वली, तो ये उसी इबारत की तरफ इशारा है। दरअसल यहां क्या इन्होंने कहा, देखो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह पिछले मसले में फरमाते थे कि गासिब से जाकर जब आधी कीमत ले आएगा मालिक तो ये फिर पहली जिनायत वाले को नहीं देगा, वरना क्या खराबी लाजिम आएगी, बदल और मुबदल मिनहू का एक ही शख्स की मिल्कियत में जमा होना लाजिम आएगा और ये तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहां पर फरमा रहे हैं कि यहां पर जो है वदफा निस्फ इलल अव्वली, कि जो कीमत वसूल करके लाया है उसका आधा पहली जिनायत वाले को दे देगा। आगे कह रहे हैं वहाजा मुत्तफकुन अलैही, ये क्या है मुत्तफकुन अलैही, यानी यहां इमाम मोहम्मद भी फरमाते हैं कि ये जो कीमत पूरी वसूल करके लाया है इसका आधा किसको दे दे, पहली जिनायत वाले को दे दे। भाई बात समझ में आ गई। तो कीला कहा गया है कि जो मातिन ने ऊपर फरमाया दफा अन निस्फ इलल अव्वली, कि ये आधी कीमत पहली जिनायत वाले को दे दे, वहाजा मुत्तफकुन अलैही, और ये मसला मुत्तफकुन अलैही है, यानी शेखैन रहमहुमल्लाह के साथ इमाम मोहम्मद रहमहुमल्लाह भी यहां पर फरमाते हैं कि ये वाला आधा किसको दे दे, पहली जिनायत वाले को। और पिछले मसले में क्या फरमाते थे कि वो आधा पहली जिनायत वाले को नहीं देना, वरना बदल और मुबदल मिनहू का एक ही शख्स की मिल्कियत में जमा होना लाजिम आएगा। तो बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि ये हाजा मुत्तफकुन अलैही, ये मसला इत्तेफाकी है। वकीला और कहा गया है, यानी बाज़ उलमा फरमाते हैं कि फीही खिलाफ मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह कमा फी तिलकल मसअलती, कि इसके अंदर भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है जैसे कि उस पिछले मसले में था। تو یہاں گویا دو قول آ گئے. بعض علماء نے کیا کہا کہ اس مسئلے میں بھی امام محمد رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا جو قیمت غاصب سے وصول کر کے لایا ہے وہ آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو نہیں دے گا جیسے پچھلے مسئلے میں تھا. بھئی اگر نہیں دیتا پھر تو بات ٹھیک ہے. ان پچھلے مسئلے میں بھی وہ فرما رہے تھے نہیں دینی, کیونکہ بدل اور مبدل منہ کا ایک ہی شخص کے پاس جمع ہونا لازم آ رہا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پہلا قول لیا جائے کہ یہ متفقن علیہ ہے, امام محمد رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو قیمت وصول کر کے لایا ہے اس کا آدھا پہلی والے کو دے دے, پہلی جنایت والے کو دے دے, تو یہ فرق کیوں کیا امام محمد رحم اللہ نے؟ یہاں اشکال ہوتا ہے امام محمد رحم اللہ پر. دو قول ذکر کیے نا کہ امام محمد رحم اللہ بعض فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلے جیسا ہے اور وہ اختلاف کرتے ہیں, اور دوسرا قول کہ یہ مسئلہ کیا ہے متفقن علیہ. تو اگر وہ اختلاف کرتے ہیں پھر تو کوئی اشکال نہیں امام محمد رحم اللہ پر, پچھلے مسئلے میں بھی اختلاف تھا اور یہاں بھی اختلاف, اور اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے, کیا فرق ہے اس مسئلے کا پچھلے مسئلے سے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ پھر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آدھی قیمت وہ پہلے والے کو دے دے گا. وجہ اس کی یہ کہ یہاں دونوں جنایتیں کس کے پاس ہوئی ہیں؟ غاصب کے پاس ہوئی ہیں, غاصب کے پاس ہوئی ہیں. لہذا سنو, توجہ سے سنو, دونوں جنایتیں ہوئی ہیں غاصب کے پاس, تو آقا پر زمان آ گیا, آقا نے آدھی قیمت پہلی جنایت والے کو دی اور آدھی قیمت دوسری جنایت والے کو, تو پہلی جنایت والے کو آدھی جو دینا پڑی کس کی وجہ سے دینا پڑی؟ غاصب. اور دوسری جنایت والے کو بھی جو آدھی دینا پڑی کس کی وجہ سے؟ غاصب. تو آقا رجوع کرے گا اور پوری قیمت لے آئے گا غاصب سے. اب جب غاصب سے لے کر آیا تو یہ جو پوری قیمت لایا اس میں سے آدھا عوض ہے اس کا جو پہلی جنایت والے کو دیا تھا, اور آدھا عوض ہے کس کا؟ جو دوسری جنایت والے کو آدھی قیمت دی تھی. لیکن اس میں سے آدھی پھر کس کو دے دے؟ پہلی جنایت والے کو. بھائی پھر تو عوض اور معوض جمع ہو رہے ہیں ایک آدمی کے پاس. فرماتے نہیں, یہ جو آدھی پہلی جنایت والے کو دے گا اس کو دوسری جنایت والے کا عوض قرار دے سکتے ہیں. یوں سمجھیں گے یہ جو اب دوبارہ دے رہا ہے اس کو, یہ اسی کا جو عوض لے کر آیا تھا وہ نہیں ہے, یہ اس کا عوض ہے جو پہلی جنایت والے کو دینا پڑا تھا. بات سمجھ میں آ؟ پوری قیمت لایا ہے نا آقا, پوری قیمت کس سے لایا ہے؟ غاصب سے. اور اس پوری قیمت میں سے آدھی کس کی وجہ سے لانی پڑی؟ پہلی جنایت والے کی وجہ سے. اور آدھی کس کی وجہ سے؟ دوسری جنایت والے کی وجہ سے. تو اب جب دوبارہ پہلی جنایت والے کو آدھی دے گا تو یہ وہ والی آدھی نہ قرار دو جو پہلی جنایت والے کے عوض میں لایا تھا, بلکہ اس کو دوسری جنایت والے کا عوض قرار دے دو. تو گویا دوسری جنایت والے کا جو آدھا اس کے عوض میں لایا ہے وہ کس کو دے دے؟ پہلی جنایت والے کو. تو اب عوض اور معوض ایک آدمی کے پاس جمع نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے قیل, کہا گیا ہے دفع نصف الى الاول, کے آدھی قیمت دے دے گا پہلی جنایت والے کو. وہذا متفق علیہ, اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے ہمارے تینوں ائمہ میں, یعنی امام محمد رحم اللہ وہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. وقیل, اور کہا گیا ہے فیہ خلاف محمد رحمہ اللہ کما فی تلک المسئلہ, کہ اس کے اندر بھی امام محمد رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں جیسے اس پچھلے مسئلے میں تھا. آگے دیکھیے بھائی, کہتے ہیں ومن غصب صبیا حرا فمات معه فجأة او بحمى لم يزمن وَإِن مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ نَهْشِ حَيَّةٍ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ الدِّيَةَ. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ایک بچے کو غصب کر لیا, آزاد بچے کو کسی شخص نے غصب کر لیا اور وہ بچہ اس کے پاس مر گیا اچانک, یعنی طبعی موت مر گیا, اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بچہ اس کے پاس ویسے ہی مر گیا. او بحما, یا بخار کی وجہ سے بچہ مر گیا, تو اس صورت میں اس غصب کرنے والے پر ضمان نہیں آئے گا. اور اگر ایک شخص نے ایک آزاد بچے کو غصب کیا और फिर उस बच्चे पर आसमानी बिजली गिरी और वो हलाक हुआ, या सांप ने उसको डस लिया और वो बच्चा हलाक हुआ, तो इस सूरत में वो शख्स यानी उसकी आकिला जामिन होगी और उनको पूरी दियत देना पड़ेगी। बुखार से बच्चा हलाक हुआ या वैसे हलाक हुआ, फिर तो दियत नहीं, जमान नहीं, लेकिन अगर आसमानी बिजली से हलाक हुआ है या सांप के डसने से हलाक हुआ है तो उस पर जमान आएगा। बात समझ में आ गई, देखिए वजह बयान करता हूं आगे। कहते हैं वमन गसबा सबियन हुर्रन, और जिसने गसब कर लिया एक आजाद बच्चे को, फमाता माहू, तो बच्चा मर गया उसके पास, फजअतन अचानक, भाई अचानक, फजअतन अचानक, औ बिहुम्मा या बुखार की वजह से, हुम्मा बुखार को कहते हैं, औ बिहुम्मा या बुखार की वजह से बच्चा मर गया, लम यजमन, तो इस सूरत में वो शख्स जामिन नहीं होगा। वजह इसकी ये भाई, क्योंकि इस बच्चे की मौत में उस आदमी का दखल नहीं है भाई। अचानक मौत तो अपने घर में भी बच्चे को आ सकती है, और बुखार की वजह से मौत जो है वो तो उसके अपने घर पर भी आ सकती है, लिहाजा इस बच्चे की हलाकत में उस आदमी का कोई दखल नहीं, लिहाजा उस पर जमान नहीं है। उसका जुर्म गसब तो हो सकता है लेकिन बच्चे की हलाकत में उसका दखल नहीं है भाई। वह इन माता बिसाइकतिन औ नहशी हय्यतिन, मेरी किताब में है बिहशी हय्यतिन, ये गलत है भाई, औ नहशी, नहशुन कहते हैं, नहशा या नहशु का माना है सांप का किसी को डस लेना, औ नहशी हय्यतिन, या सांप के डसने की वजह से वो बच्चा मर गया। वह इन माता बिसाइकतिन औ नहशी हय्यतिन, और अगर वो बच्चा मर गया आसमानी बिजली की वजह से, औ नहशी हय्यतिन, या सांप के डसने की वजह से, जमीना आकिलतुहु दियता, तो जामिन होगी उस शख्स की आकिला दियत की, आकिला दियत की जामिन होगी भाई। क्यों? वजह यह कि यहां पर वो आदमी उसकी मौत का सबब बन गया है, इसलिए क्योंकि आसमानी बिजली हर जगह ज्यादा नहीं गिरती भाई, बाज इलाकों में आसमानी बिजली ज्यादा गिरती है और बाज इलाकों में कम, या जैसे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में आसमानी बिजलियां ज्यादा गिरती हैं, तो ये शख्स उस बच्चे की मौत का सबब बन गया क्योंकि ये ले गया उसको उस इलाके में, उस पहाड़ी इलाके में जहां पर बिजलियां ज्यादा गिरती हैं, और बच्चा हलाक हो गया, तो ये सबब बन गया, इसलिए इस पर दियत आएगी। और इसी तरह सांप के डसने से भी ये जामिन होगा, इसलिए क्योंकि सांप भी हर जगह नहीं होते ज्यादा भाई, बाज इलाकों में सांप ज्यादा होते हैं, बाज में बहुत कम होते हैं, तो मालूम हुआ ये उस बच्चे को ऐसी जगह ले गया जहां पर सांप ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से बच्चा हलाक हुआ, तो ये बच्चे की मौत का सबब बन गया, इसलिए जामिन होगा। जाब्ता समझ में आया? मालूम हुआ जब कोई किसी को गसब कर ले और बच्चा वगैरह उसके पास हलाक हुआ, तो सबब को देखेंगे कैसा सबब है, ये हर जगह पाया जाता है या जहां ये लेकर चला गया था वहां ज्यादा पाया जाता है, अगर हर जगह पाया जाता है तो वो मौत का जिम्मेदार नहीं, जमान नहीं आएगा मौत का, गसब वगैरह की वजह से जो काजी सजा दे वो अलग है भाई। और अगर सबब खास है जो हर जगह नहीं होता, ये उसको वहां ले गया और वो मौत का सबब बना, तो ये जिम्मेदार है मौत का, तो इस सूरत में इस पर जमान आएगा। जाब्ता समझ में आ गया? देखिए कहते हैं वल कियास अल्लाह यजमन बिल गस्ब, कियास तो ये तकाजा करता है कि ये शख्स गसब की वजह से जामिन न हो। वह कौल जुफर व शाफी रहिमहुम अल्लाह, और यही कौल इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमल्ला का भी है, वो फरमाते हैं कि जामिन नहीं होगा। क्यों? कहते हैं लिअन अल गस्ब फिल हुर्र ला यतहक्ककु, इसलिए क्योंकि गसब जो है वो आजाद आदमी में नहीं पाया जाता भाई, आजाद आदमी में गसब नहीं होता, गसब तो माल को किया जाता है, आजाद आदमी को गसब नहीं किया जाता, लेकिन इस्तेहसानन जमान आएगा। अब वो जिक्र कर रहे हैं वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है भाई, मैं बार बार जिक्र करता हूं, एक है कियास एक है इस्तेहसान, ताकि आपके खूब जहन नशीन हो जाए भाई, अगले दर्जों में भी इन बातों को साथ साथ दोहराते रहा करें कभी, ताकि खूब जहन नशीन हो जाएं। एक है कियास एक है इस्तेहसान। कियास जो है वो अकली दलील को कहते हैं, और इस्तेहसान जो है हर वो शरई दलील जो कियास के मुकाबले में आ जाए उसको इस्तेहसान कहते हैं। मसलन एक शख्स एक मसले के अंदर कियास पेश करता है और आप कुरान की आयत जिक्र करते हैं तो ये आयत इस्तेहसान कहलाएगी, क्योंकि इसके मुकाबले में क्या मौजूद है? कियास। तो कियास मुकाबले में हो तो मुकाबिल दलील को इस्तेहसान कहते हैं, अगर मुकाबले में कियास न हो तो फिर उसको इस्तेहसान नहीं कहते। या एक शख्स एक मसले में दलील जिक्र करता है, अकली दलील भाई, कियास जिक्र करता है, और आप मुकाबले में हदीस जिक्र कर देते हैं, तो याद रखो आपकी जो दलील है वो कियास के मुकाबले में है, अगरचे हदीस है लेकिन इसको इस्तेहसान कहेंगे। लेकिन अलबत्ता ज्यादातर इस्तेहसान का जो है वो इतलाक कियास खफी पर होता है। एक कियास जली है, एक कियास खफी। कियास जली, जली नाम से ही जाहिर है, जो जाहिर हो, और खफी जो पोशीदा हो। जो कियास जली है यानी जो बात जो जाहिर है फौरन ही अकल जहां तक पहुंच जाती है उसको कियास जली कहते हैं, और जो जरा गहरी बात हो फौरन जहन वहां तक नहीं पहुंचता, गौर और फिक्र करना पड़ता है, उसको कियास खफी कहते हैं। और इस्तेहसान का इतलाक ज्यादातर कियास खफी पर होता है, कियास खफी। लेकिन कियास खफी को भी तब इस्तेहसान कहेंगे जब इसके मुकाबले में कियास जली मौजूद हो, फिर कहेंगे ये इस्तेहसान है। और अगर मुकाबले में कियास जली नहीं है फिर कियास जितना भी खफी हो उसको कियास ही कहेंगे, इस्तेहसान नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां भी देखो कियास मौजूद है इसलिए इस्तेहसान जिक्र किया, उसके मुकाबले में जो कियास खफी है उसको इस्तेहसान कहा। कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहु ला यजमनु बिल गसबी, कि ये जो गसब करने वाला है ये गसब की वजह से जामिन नहीं, क्योंकि आजाद में तो गसब होता ही नहीं है, बल बिल इतलाफी, बल्कि ये उसको हलाक करने की वजह से जामिन है। तस्बीबन भी नकली ही इला मकान इन फी ही सवाइकु अविल हयातु। तस्बीब सबब युसबिबु, तस्बीब का माना है सबब बनना। तस्बीबन सबब बनने की वजह से कि आदमी क्या बन गया, उसके कत्ल का सबब। तस्बीबन भी नकली ही इला मकान इन, सबब बनने की वजह से बवजह नकल करने उस बच्चे को इला मकान इन ऐसी जगह में, फी ही सवाइको जिसमें आसमानी बिजलियां होती हैं, अविल हयातु या जहां सांप होते हैं, तो ये सबब बन गया। बात समझ में आ रही है? फिर तर्जमा देखें वजहुल इस्तेहसान अन्नहु ला यज़मनु बिल गस्बि बल बिल इतलाफ तस्बीबन बि नक़लिही इला मकानिन फीही सवाइकु अविल हयातु। इस्तेहसान की वजह यह है कि वो शख्स गसब की वजह से जामिन नहीं होगा, बल बिल इतलाफी, बल्कि उसको हलाक करने की वजह से सबब बनते हुए बवजह उसको नकल करने के ऐसी जगह की तरफ जिसके अंदर आसमानी बिजलियां और सांप होते हैं। तर्जमा समझ में आ गया? आगे देखिए कमाफी सबीन ऊ दिहा अबदन फकत लहू फ इन अतलफ मालन बिला ईदा इन जमीना व इन अतलफ बादहू ला। सूरत मसला यह, एक शख्स बच्चे के पास अपना कोई माल रखवा देता है और बच्चा उसको हलाक कर देता है, जाया कर देता है, तो बच्चे पर जमान नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा? बच्चे ने उसका माल तलफ किया है, माल हलाक किया, बच्चे ने उसका माल जाया किया है। कहते हैं इस आदमी का माल माले मोहतरम था, माले महफूज था, माले महफूज था, लेकिन इसने खुद बच्चे के हवाले कर दिया है। बच्चा तो नासमझ है भाई, बच्चे के हवाले करके गोया इसने खुद अपने माल की हिफाजत खत्म कर दी। अब ये माले महफूज रहा ही नहीं, और जब माले महफूज नहीं तो इसको जाया करने की वजह से बच्चे पर जमान भी नहीं आएगा। सूरत समझ में आई? लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी ने अपना गुलाम किसी बच्चे के पास बतौर अमानत के रखवाया और बच्चे ने उसको कत्ल कर दिया, मसलन बच्चा 12 साल का था, गुलाम 4 साल का, छोटा बच्चा था अभी, उसने उसके बाद गुलाम अपना रखवाया और बच्चे ने उसको कत्ल कर दिया, तो इस सूरत में बच्चे की आकेला पर जमान आएगा। भाई क्यों? उसने बच्चे की हिफाजत में दिया है, तुम पहले तो गुलाम महफूज था लेकिन अब तो गैर महफूज बन गया। अभी आपने हमें बताया कि माल महफूज था लेकिन जब बच्चे को दे दिया तो खुद ही उसकी हिफाजत क्या कर दी, खत्म कर दी, खुद ही हलाकत वाली जगह पे माल पहुंचा दिया, तो ये आदमी जिम्मेदार है, बच्चा तो जिम्मेदार नहीं। लेकिन यहां गुलाम में आप कहते हैं कि बच्चे पर दियत आएगी, कहते हैं इसलिए क्योंकि वो जो माल होता है उसकी इस्मत मालिक का हक होता है। इस्मत हिफाजत, हिफाजत माल महफूज होता है किसके हक की वजह से, मालिक के हक की वजह से। और मालिक ने जब खुद बच्चे के हवाले किया है तो उसने खुद उसकी हिफाजत क्या कर दी, माल की, खत्म कर दी, इसका हक था ना। लेकिन गुलाम की जो हिफाजत होती है, गुलाम की जो इस्मत होती है, वो गुलाम के अपने हक की वजह से होती है, मालिक के हक की वजह से नहीं। लिहाजा जब गुलाम बच्चे को दिया तो गुलाम अभी भी मासूम है भाई, मासूम उद्दम है, क्योंकि उसकी इस्मत मालिक की वजह से है ही नहीं, अपनी जात की वजह से है, लिहाजा उसकी इस्मत खत्म नहीं। जब वो माले महफूज अभी तक है तो अब बच्चा जब उसको जाया करेगा, कत्ल करेगा, तो उस पर जमान आएगा और इस गुलाम की कीमत देगी भाई। मसला समझ में आ गया। कहते हैं कमाफी सबीयिन, पिछले मसले में क्या था, अगर बच्चा मरा आसमानी बिजली से और नहशी हयतीन या सांप के डसने से, जमीना आकिला तो दिया था, तो उस गासिब की आकिला दियत की जामिन होगी, कमा फी सबीयिन, जैसे इस मसले में है कि यहां पर भी बच्चे की आकिला जामिन होगी। तो कहते हैं कमा फी सबीयिन, जैसे कि उस बच्चे के अंदर ऊ दिया आबदन के अमानत रखवाया गया उस बच्चे के पास आबदन किसी गुलाम को, फकत अलाहू, फिर बच्चे ने उसको कत्ल कर दिया, तो जैसे इसमें बच्चे की आकिला क्या होगी, जिम्मेदार होगी। इस सूरत में आकिला जामिन होगी और इस गुलाम की कीमत देगी भाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि यह मकतूल गुलाम था और गुलाम के अंदर दियत नहीं आती, उसकी कीमत आती है, तो आकिला उस गुलाम की कीमत अदा करेंगे भाई। फइन अतलफा मालन बिला इदाइन जमीना, हां एक और बात याद रखना, यह तो वो सूरत थी जब माल बच्चे के पास बतौर अमानत के रखवाया और फिर बच्चे ने हलाक कर दिया, माल को जाया कर दिया, तो बच्चे पर जमान नहीं, क्योंकि माल महफूज था, किसका हक था, मालिक का, और मालिक ने खुद उसको तबाही के किनारे पहुंचा दिया, बच्चे के हवाले कर दिया, और बच्चा तो नासमझ है, तो अब जमान नहीं आएगा। लेकिन अगर वैसे ही बच्चे ने किसी की चीज तलफ कर दी, चलते चलते किसी की कोई चीज तोड़ दी, खराब कर दी, जाया कर दी, उस बच्चे के पास तो अमानत नहीं रखवाई थी, वैसे ही उसने कोई चीज जाया कर दी, तो इस सूरत में जमान आएगा भाई। तो कहते हैं फइन अतलफा मालन, अगर बच्चे ने कोई माल तलफ कर दिया, बिला इदाइन, बगैर अमानत रखवाए ही, तो जमीना, तो इस सूरत में वो जामिन होगा। वह इन अतलफा बादहू, और अगर उसने माल को हलाक किया, बादहू अई बादल ईदाई, अमानत रखवाने के बाद, तो ला, इस सूरत में वो जामिन नहीं होगा। कहते हैं अल ईदाउ यतअद्दा इलल मफ़ऊलैन, ऊपर मतन में आया था ना, कमा फी सबीयिन उदिया अब्दन, उदिया अब्दन, तो इश्काल होता है कि उदिया अमानत रखवाई गई, अब्दुन, इसको नाइफाइल होना चाहिए, किसको अमानत रखवाया गया, गुलाम को, तो आपको बतला रहे नहीं भाई, ये आबदन मफ़ऊल है, ये इसी तरह है, ये दरअसल औदा यूदिउ का माना है, अमानत किसी के पास रखवाना, और ये दो मफ़ऊल चाहता है, कितने मफ़ऊल चाहता है, दो मफ़ऊल। और फिर जब इसको हम फेले मजहूल बनाएंगे तो एक मफ़ऊल है वो तो नाइब फाइल बन जाएगा, और दूसरा मफ़ऊल उसी तरह मफ़ऊल का मफ़ऊल रहेगा, तो उदिया के अंदर हुआ जमीर है वो नाइब फाइल है, और वो बच्चे को राजे है कि उस बच्चे के पास अमानत रखवाई गई अबदन, एक गुलाम को, बात समझ में, बच्चे के पास अमानत रखवाया गया अबदन, एक गुलाम को, तो यही अब बयान करेंगे। कहते हैं अल ईदाउ यतअद्दा इलल मफ़ऊलैनी, कि ईदा का फेल जो है ये मुतअद्दी होता है दो मफ़ऊलों की तरफ, युकालु अरबी में कहते हैं औदातु ज़ैदन दिरहमन, औदातु मैंने अमानत रखवाया, ज़ैदन ज़ैद के पास, दिरहमन एक दिरहम, तो ये दो मफ़ऊल चाहता है। फिर जब इसको मजहूल बनाएंगे तो कैसे करेंगे, उदिया ज़ैदुन दिरहमन, अमानत रखवाई गई जैद के पास, दिरहमन एक दिरहम, तो जैद तो नाइफाइल बन जाएगा लेकिन दिरहमन उसी तरह मफ़ऊल रहेगा। فالفعل المجهول وهو اودع، پس فعل مجهول جو ہے اور وہ اودع ہے جو متن میں آیا، اسنید الی المفعول الاول، اس کا اسناد کیا گیا مفعول اول کی طرف، وہو الصبی، اور وہ صبی ہے، یعنی اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو صبی کو راجع ہے. فالودیعت عنده ان کان عبدا، پس امانت اگر اس بچے کے پاس جو تھی اگر وہ غلام تھا، تو زمینہ بالقتل، تو بچہ اس کا ضامن ہوگا قتل کرنے کی وجہ سے. وان کان مالا غیرہ لا یضمنہ، اور اگر کوئی مال تھا غلام کے علاوہ تو بچہ ضامن نہیں ہوگا. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. ویضمن عند ابی یوسف و شافعی رحمہم اللہ، اور ضامن ہوگا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں کوئی اور مال بچے کے پاس رکھوایا ہے تو بھی ضمان آئے گا. لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا، اس لیے کیونکہ بچے نے تلف کر دیا، ہلاک کر دیا، مالًا معصومًا، ایسا مال جو محفوظ تھا. معصوم کا کیا معنی؟ محفوظ، جو محفوظ تھا. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، غیر العبد معصوم لحق السید، کہ غلام کے علاوہ جو اور مال ہے وہ معصوم ہے یعنی محفوظ ہے، لحق السید، آقا کے حق کی وجہ سے. وقد فوتہ، اور آقا نے خود اس کی عصمت فوت کر دی، اس کی حفاظت فوت کر دی. حیث وضعہ فی ید صبی، اس حیثیت سے کہ آقا نے اس کو رکھوا دیا بچے کے قبضے میں، بچے کے ہاتھ میں. وأما العبد فعصمته لحقه، اور باقی غلام جو ہے اس کی عصمت جو ہے وہ اس غلام کے اپنے حق کی وجہ سے ہے، یعنی وہ اپنی ذات کی وجہ سے وہ محفوظ الدم ہے، آقا کی وجہ سے وہ محفوظ الدم نہیں. تو آقا نے دے بھی دیا تو اب بھی وہ محفوظ الدم ہی ہے، آقا کے فعل سے اس کا محفوظ الدم ہونا ختم نہیں، لیکن مال جب آقا نے دیا تو آقا نے گویا خود ہی اس کی حفاظت ختم کر دی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَبْدُ فَعِصْمَتُهُ لِحَقِّهِ، اور باقی غلام جو ہے تو اس کی عصمت، اس کی حفاظت جو ہے اس کے اپنے حق کی وجہ سے ہے. اِذْ هُوَ مُبْقًا عَلَىٰ أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ، اس لیے کیونکہ غلام جو ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے اصل حریت پر، فی حق الدمی، اس کے خون کے حق میں. یاد رکھو غلام ویسے تو مال ہے، مال، لیکن اس اپنی خون کے اعتبار سے، اپنے خون کے لحاظ سے اس کو اصل حریت پر باقی رکھا گیا ہے. اصل انسان میں اصل ہے حریت، غلام جو بنتا ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے بنتا ہے، اصل انسان میں کیا ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. اپنے خون کے لحاظ سے غلام جو ہے وہ اصل حریت پر اس کو باقی رکھا گیا ہے، یعنی جیسے آزاد آدمی محفوظ الدم ہوتا ہے تو یہ بھی آزاد کی طرح کیا ہے، محفوظ الدم. اس کے ذات کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے، یہ غلام ہے، لیکن اپنے خون کے اعتبار سے یہ کیا ہے، محفوظ الدم ہے. یہ مانا ہے اذ ہوا مبقن علی اصل الحریتی، اس لیے کیونکہ غلام جو ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے، علی اصل الحریتی، اصل حریت پر، حریت کی اصل پر اس کو باقی رکھا گیا ہے. فی حق دمی، اس کے خون کے حق میں. چنانچہ اسی لیے یہ تو آقا کا مال ہے، اسے جو خدمت وغیرہ آقا لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن اگر آقا کہے، آقا اقرار کرے میرے اس غلام نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو اس کے لیے اقرار کر رہا ہے کس پر، غلام پر، تو آقا کا یہ قول غلام پر نافذ نہیں ہوگا. اس آقا کے اقرار سے غلام پر دیت یا قصاص نہیں آ سکتا، کیونکہ غلام اپنی ذات کے اعتبار سے تو غلام ہے، لیکن اپنے خون کے اعتبار سے وہ آزاد ہی ہے، آقا اس پر قصاص یا دیت کو واجب نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.